ओम शांति। अपने दिल पर हाथ रख के क्या पूछो स्वयं से? अपने दिल पर हाथ रखो और पूछो स्वयं से क्या? ये पढ़ाई कभी सुनी थी? ये पूछो और क्या क्या पूछो? अपनी दिल पर हाथ रखो और स्वयं से पूछो, क्या पूछो? कि बाप जो सुनाते हैं वो पहले कभी सुना था? तो क्या उत्तर आएगा? बिल्कुल नहीं। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, जो प्यार बाप से मिला है, जो स्नेह की धारा, जो प्रेम की अजस्त्र धारा बही है परमात्मा प्रेम से, क्या और किसी ने ऐसा प्यार दिया था? कल की मुरली में था, बुढ़ियों को भी नशा है। क्या क्या नशा है? कल की मुरली में था कि हम बाप आए हैं 5000 वर्ष के बाद, तो हम वर्षा लेकर रहेंगे। तो बाबा आज किसको देख रहे हैं? अपने बच्चों को देख रहे हैं, और किसको देख रहे हैं? श्रेष्ठ स्वरूप को देख रहे हैं बच्चों के, और किसको देख रहे हैं? स्नेह स्वरूप को देख रहे हैं, शक्ति स्वरूप को देख रहे हो, और सहयोग के स्वरूप को देख रहे हो। सहयोग की इन तीनों की श्रेष्ठ मूर्त को देख रहे हैं, चमकते हुए सितारों को देख रहे हैं। तो बाप आए हैं और आते ही भाग्य का सितारा देख रहे हैं सभी बच्चों का, देख रहे हैं खुशी का झरना सदा बह रहा है कि बीच बीच में रुकता है, अखूट और अविनाशी। ये झरना रुक तो नहीं जाता? नहीं रुकता। कब रुकता है? टाइमिंग क्या है झरने का बहने का कि रुक जाता है बीच बीच में? अमृत वेला बहता है, फिर मुरली के समय बहता है, और फिर बंद होता है, फिर स्पीड कम हो जाती है, फिर सीधा 9 बजे बंद हो जाती है। स्पीड कम होती है तो सीधा कितने बजे? 6, 6:30 बजे फिर से बहना चालू होता है कि निरंतर बहता रहता है? निरंतर बहता रहता है। जो बच्चे सदा खुश रहते हैं उनके लिए बाबा ने क्या कहा था पिछले सीजन में? बाबा के आंखों के सामने झूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, डोलते रहते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, जो सदा खुश रहते हैं। तो बाबा ने आज कहा, खुशी का झरना कभी भी बंद ना हो जाए। उसके लिए कहा, विधि क्या है? चाबी बताइए। एक कौन सी चाबी? नॉलेज, ज्ञान ही वह चाबी है। और खजाना कौन सा है? भाग्य का खजाना है। तो ज्ञान की चाबी और खजाना भाग्य का, तो क्या बन जाएंगे? माला माल। और जो माला माल है, जो भरपूर है, वो सदा खुश है, और खुशी का झरना सदा बहता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा, कभी रुकेगा नहीं। निरंतर खुशी, आत्मिक खुशी, अलौकिक खुशी, आंतरिक खुशी कब होगी? जब भरपूरता होगी, संपन्नता होगी, ज्ञान से और योग से और परमात्मा स्नेह से और परमात्मा प्यार से आत्मा सराबोर होगी, भरी हुई होगी, लबालब भरी होगी, तब होगा खुशी का ये झरना, तब बहेगा, नहीं तो नहीं। अगर अज्ञान है तो नहीं बहेगा। चाबी है ज्ञान। किसी एक स्कूल में एक परीक्षक आए, अचानक निरीक्षक, परीक्षक, इन्वेस्ट, जो चेकिंग करने के लिए इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं, और स्कूल में गए और देखा कि स्कूल में तो रामायण का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जो शिक्षक है वो इस तरह रामायण पढ़ा रहा है जैसे उसे पूरी याद हो, परंतु किताब सामने थी और जितने बच्चे थे वो सब भी बैठे थे पर सब सो रहे थे। तो छोटे बच्चे थे और परीक्षक को लगा कि बच्चों को तोड़फोड़ पसंद है, तो क्यों ना मैं ऐसा प्रश्न पूछूं कि जो बच्चों को पसंद है, और क्योंकि रामायण का पाठ चालू है तो पूछता है कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। क्या पूछता है परीक्षक कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? शिव का धनुष तो पता है ना, सीता स्वयंवर वाला। तो पूछता है कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो एक बच्चा, इससे पहले कि कोई कुछ कहे, एक बच्चा तुरंत हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मैंने नहीं तोड़ा। क्योंकि जब भी कुछ भी तोड़फोड़ होता है स्कूल में, हमेशा मुझ पर आरोप लगाया जाता है। कुछ भी टूटता है तो सबसे पहले दोषारोपण मुझ पर होता है। इसके लिए पहले ही कह देता हूं कि ये जो धनुष, जो धनुष की आप बात कर रहे हो, वो धनुष मैंने नहीं तोड़ा है। तो परीक्षक को बड़ा आश्चर्य लगता है ये सुनकर। परंतु जो शिक्षक होता है वो कहता है इसकी बातों को बिल्कुल मत सुनना, जब भी कुछ टूटता है यही तोड़ता है, इस बार भी ये जो धनुष की आप जो बात कर रहे हो इसी ने तोड़ा होगा, बिल्कुल मत सुनना, पिछली बार भी जब टूटा था तो यही था। इसके लिए अगर और उस विद्यार्थी को कहता है कि अगर तुमने नहीं तोड़ा तो तुमको खड़े रहकर बताने की क्या जरूरत थी कि तुमने ही वो शिव का धनुष तोड़ा है। तो परीक्षक अवाक सोचता है यहां अभी खड़े रहने से कुछ फायदा नहीं है। वो सीधा जाता है प्रिंसिपल के ऑफिस में, जो प्रधान अध्यापक होता है उसके ऑफिस में जाता है और कहता है कि मैं स्कूल में गया था, रामायण का पाठ चालू था और मैंने पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो बच्चा कहता है कि मैंने नहीं तोड़ा और शिक्षक कहता है कि इसी ने तोड़ा, आप क्या कहते हो? प्रधान अध्यापक कहता है अभी जो टूटा वो टूटा, अभी क्या करना है उससे, क्योंकि विद्यार्थियों के ऊपर कुछ भी करना बहुत खतरे से खाली नहीं है, अनशन हो जाता है, उनके माँ बाप आ जाते हो और आजकल के विद्यार्थी पहले जैसे नहीं रहे। इसके लिए कुछ भी कहना अच्छी बात नहीं है, इसके लिए जो हो गया वो हो गया, अब भूल जाओ उसको, टूटा तो टूटा। तो परीक्षक को लगता है कि अभी क्या किया जाए, तो सीधा स्कूल की समिति के अध्यक्ष के पास जाता है। स्कूल की समिति के अध्यक्ष को कहता है कि ऐसी बात है, रामायण का पाठ चल रहा है, मैंने कहा शिव का धनुष किसने तोड़ा, विद्यार्थी कहता है मैंने नहीं तोड़ा, शिक्षक कहता है इसी ने तोड़ा, और प्रधान अध्यापक कहता है कि जो हुआ भूल जाओ, आप क्या कहते हो? तो क्या कहेंगे, क्या कहता होगा? अंधेर नगरी चौपट राजा। वो कहता है कि चलो टूटा तो टूटा, अब जो अपना फर्नीचर डिपार्टमेंट है उससे बना लेंगे, बात को यहीं खत्म कर दो, और बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। सभी स्तरों पर अज्ञान है, और जहां अज्ञान है वहां पर दोषारोपण है, जहां ज्ञान है वहां प्रकाश है, वहां दोषारोपण नहीं है, वहां छिद्रान्वेषण नहीं है, इसने किया उसने किया ये ऐसा है वो ऐसा है। तो आत्मा की खुशी तो इससे तो खत्म हो जाती है अज्ञान से। इसके लिए बाबा ने कहा ज्ञान क्या है? चाबी। इस चाबी से क्या खोल दो? भाग्य का खजाना। जितना भाग्य चाहिए, जितना खजाना चाहिए, उतना तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, आत्मा भरपूर हो जाएगी और झरना बहने चालू हो जाएगा, अविरल धारा झरने की। तो आज बाबा ने क्या देखा, आजकल बाप दादा पेपर चेकिंग कर रहे हैं, बहुत समय से बाबा पेपर चेकिंग कर रहे हैं। कभी प्यूरिटी का पेपर चेक किया मनसा में, वाचा में और कर्मणा में, स्वप्न और संकल्प में। उसके बाद पिछले संडे कौन सा पेपर चेक किया, पुरुषार्थी स्वरूप और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में अंतर कितना है वो पेपर चेक किया। कभी दिव्य दर्पण का पेपर चेक किया, कौन सा स्वरूप में कितना दिखाते हो, तीन त्रिकाल का दर्शन कितना कराते हो आत्माओं को। तो आज बाबा ने कितने मार्क्स का पेपर चेक किया, कितने प्रश्न हैं? तीन प्रश्न हैं, तीन में तीन तीन कितने हो गए, नौ, और एक है दसवां, वो कहां है, और भी है, 10 प्रश्न चेक किए बाबा ने आज, हर एक प्रश्न के कितने मार्क्स हैं? 10 ले लो तो टोटल पेपर कितने मार्क्स का है? 100। और रिजल्ट में क्या देखा? पास कितने हैं, फुल पास कितने हैं, और ग्रेस, रहम, मेहनत नहीं, रहम, रहम से कितने पास है? पहले कैटेगरी में कितने हैं? 50% से भी कम, फुल पास और पास विद ऑनर कहो उसको। दूसरी कैटेगरी में 70% से भी ज्यादा, और तीसरी में बात मत पूछो, लिस्ट बहुत लंबी है, लंबी लिस्ट है। तो आज बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ स्वरूप को देख रहे थे, स्नेह और याद का संकल्प था, और बाप दादा के साथ साथ कौन से बच्चे थे? अच्छे अच्छे बच्चे, सहज योगी बच्चे हैं, सर्विसेबल जो है, जो अच्छे अच्छे है, जो सहज योगी है, ऐसे बच्चे दूर होते हुए भी बाप के साथ है, बाप के समीप है, ऐसे बच्चों की सभा बाबा देख रहे थे। बाबा ने कभी कहा है ये बाप और बच्चों का मिलन, ये जो है ये महफिल है, ये महफिल भी है तो कोई एक बगीचा भी है, तो ये एक बीच भी है। बीच पता है ना माताओं को, बीच किनारा सागर का, ये एक ऐसा बीच है कि जिसमें लाखों के बीच में प्राइवेट है, ये एक ऐसा बीच है कि जो लाखों के बीच, यहां बीच मतलब मध्य में भी प्राइवेट है। तो ये ऐसी सभा है, ऐसी अलौकिक सभा, ऐसी महफिल, ऐसा बगीचा, ऐसा सागर का किनारा, बाप और बच्चों का ये मिलन। तो इसमें बाप दादा ने सबसे पहला कौन सा पेपर चेक किया? स्नेह का पेपर चेक किया, उसमें तो सब पास ही है, अटूट में पास कम है, वैसे पास है। तो कौन सा पेपर देखा बाबा ने पहले? स्नेह का पेपर देखा। क्या देखा उस पेपर में? चेकिंग चालू है, फिर रिजल्ट आएगी, फिर मार्क्स दिए जाएंगे, टोटल होगी, सब कुछ होगा। और इस समय बाप किस रूप में चेक करेंगे? बाप के रूप में, धर्मराज के रूप में, बाद में, अभी बाप के रूप में चेकिंग चल रही है पेपर की। तो स्नेह में क्या देखा? कोई बीच में तो नहीं आ रहा है। स्नेह जैसे कि एक धागा है, एक डोर है, व्यक्ति और परिस्थिति, कोशिश तो नहीं कर रही है, ये व्यक्ति और परिस्थिति जैसी ऊंची दीवार है, इसको कितनों ने पार कर दिया? सबने कर दिया वैसे तो। स्नेह का धागा अटूट, कितना भी तोड़ने की कोशिश करो नहीं टूटेगा, ऐसा प्यार से बांधा है भगवान ने, उसके प्यार के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कल की मुरली में उदाहरण दिया था ना, पतिव्रता नारी, कितनी हिम्मत आ जाती है, न्यौछावर हो जाती है, वैसे ये है बापों का बाप और पतियों का पति। तो बाबा के प्यार का ये धागा कैसा रहे? अटूट, आदि से अब तक अटूट, टूटे ना। कोई गांठ ना हो यहां पर, कौन सी गांठ है? कमजोरी की गांठ, कारण की गांठ, क्योंकि कोई भी कहते हैं कोई भी संबंध है, अगर वो टूट जाता है तो वापस कितना भी उसको जोड़ो, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है वहां पर क्रैक। इसके लिए बार बार तोड़ना और फिर गांठ लगाना और कारण और कमजोरी की गांठ, इससे भी परे। तो बाप से प्यार कैसा हो? अटूट, अखंड, अटल, कभी खत्म न होने वाला, अविनाशी। उस प्यार और हमारे बीच में, हमारे बीच में और बाप के बीच में और दूसरा कोई ना आए, ना कोई व्यक्ति आए, ना तो कोई परिस्थिति आए। दीवार है ऊंची, बाबा ने कहा, उसको भी पार कर दिया है, ऊंची दीवारों को भी पार कर दिया है। तो ऐसा हमारा उसके साथ प्यार हो, जिस प्यार के बीच में कोई ना आए। अगर कोई भी संबंध, दूसरा पॉइंट क्या है, वही है ना, प्रीत की रीत, सारे संबंध एक से, अगर एक भी संबंध उसका उससे नहीं जोड़ा, इसका मतलब उस संबंध, वो संबंध जरूर इस संसार में हमें कहीं ना कहीं खींच रहा है, इसके लिए हर संबंध उससे जोड़ना, प्रीत की रीत निभानी, हर संबंध से निभानी। ये दूसरा पेपर था, कितना निभाया, सारे संबंध उससे जोड़े या कहीं और बुद्धि जाती है। अगर और बुद्धि जाती है इसका मतलब संसार में भी रस है, सारे रस एक से प्राप्त नहीं हो रहे। तीसरा पेपर कौन सा चेक किया, प्रेम का प्रत्यक्ष रिटर्न, प्यार का प्रत्यक्ष रिटर्न क्या है, स्नेही स्वरूप। कितनों को बाप का स्नेही बनाया, कितने हृदय में परमात्मा प्रेम को भर दिया, कितने हृदय को परमात्मा प्रेम से भरपूर कर दिया, कितनों को बाप का दीवाना बना दिया, डायरेक्ट बाप का, केवल प्यूरिटी का नहीं, केवल ज्ञान का भी नहीं, श्रेष्ठ आत्माओं का भी नहीं, डायरेक्ट बाप का। जीवन परिवर्तन से भी केवल आकर्षित नहीं, ज्ञान अच्छा, बाप अच्छा, जीवन अच्छा नहीं, अच्छे से अच्छा एक बाप। तो सबको एक बाप की तरफ ले जाना। ये तीन पेपर देखे बाबा ने। तो पहला तो पेपर है हमारा प्यार, दूसरा सर्वसंबंध, तीसरा दूसरों को प्रभु प्यार में कितना रंग दिया। ये तीन पेपर, इस पे बाबा मार्क्स देख रहे थे, चेक कर रहे थे और मार्क्स दे रहे थे। कितना सूक्ष्म पेपर है। दूसरा पेपर सहयोग। पहला पेपर क्या है उसमें, सहयोग में निष्काम, कोई स्वार्थ तो नहीं है, सहयोग तो दे रहे परंतु निहित स्वार्थ है। स्वार्थ है तो ऐसा सहयोग बाबा को पसंद नहीं है, जो निश्चल है, निष्काम है, कामनाओं से रहित निस्वार्थ, ऐसा जो है वो जो सेवा है, वो जो सहयोग है। विश्व नवनिर्माण के कार्य में दो बातें चाहिए, निमित्त और निर्माण, स्लोगन में कहा था। ऐसा जो सहयोग है आत्माओं को वो बाप को प्रिय, इसमें मार्क्स दे रहे थे बाबा कि कितने निष्कामी हैं, कोई स्वार्थ तो नहीं है, हमारा नाम हो जाए, महिमा हो जाए, प्रशंसा हो जाए, नाम मान और शान इनसे परे, ऐसा सहयोग करना है। और दूसरा नंबर सहयोग में मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मना से भी, संबंध से भी, संपर्क से भी, हर प्रकार से सहयोग देना है, तन मन धन से भी, सब कुछ। जैसे कि ये यज्ञ है, तन भी इसके लिए तो, मन भी उसके लिए तो, धन भी उसके लिए, तो मनसा से भी, तो वाचा से भी, से तो कर्मना से भी, सब कुछ अर्पण। इस यज्ञ की वेदी पर सब कुछ स्वाहा करना है, क्योंकि किसका रचा हुआ यज्ञ है, कितना समय उसको पुकारा, पुकारते रहे उसको, पुकारते रहे, और वो अब आया है। अब भी कुछ कुछ छुपा के रखोगे उससे, वो आया है तो सब कुछ उस पर न्योछावर। उसके बाद नेक्स्ट सहयोग कौन सा, कितनों को योग्य बनाया और सहयोगी बनाया। हम तो सहयोगी बन गए, अब दूसरों को कितना बनाया। उसमें था हम तो स्नेही है और दूसरों को स्नेही कितना बनाया, इसमें है हम तो सहयोगी पहला और दूसरा दूसरों को कितना सहयोगी बनाया। उसके बाद का पेपर है शक्ति स्वरूप का पेपर, उसमें क्या देखा, मास्टर सर्वशक्तिवान है या शक्तिवान है। दूसरा नंबर समय पर शक्तियों का लाभ, शस्त्रियों के शस्त्र का लाभ कितना लेते हो, या तो फिर लॉकर में तो नहीं रखते होते। ये शक्तियां ऐसी है, बड़ी सूक्ष्म शक्तियां है, बड़ी, ये खजाना ऐसा है कि लॉकर में रखोगे तो कम हो जाएगा, बाहर रखोगे तो वृद्धि को प्राप्त होगा, कार्य में लगाओगे तो वृद्धि को प्राप्त होगा, अद्भुत सा खजाना है ये। उसके बाद में लास्ट स्वयं की शक्तियों की प्राप्ति से दूसरों को कितना शक्तिशाली बनाया, मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया। तो ये बाबा ने कितने पे, कितने क्वेश्चन हो गए, ये 9, एक एक 10-10 का, तो कितने हो गए 90। और 10वां प्रश्न कहाँ है जिसकी रिजल्ट बाबा ने देखी? और एक है नहीं, प्रश्न, प्रश्न कहाँ है? जज, जज और वकील, जूरिस्ट विंग से बाप दादा मिल रहे, कितनों को स्वतंत्र किया, ये रिजल्ट आज बाप दादा देख रहे हैं। स्वतंत्र कितनों को किया, कितनों को छुड़ाया, किससे स्वतंत्र? बंधनों से, क्योंकि आत्मा इतनी जैसे फंसी हुई है, कल परसों की मुरली में था ना, जेल में फंसी हुई है, जैसे आसुरी जेल में फंसी हुई है, निकलना नहीं चाहती है वहां से, ऐसी आत्माओं को उस जेल से बाहर निकालना, स्वयं स्वतंत्र बनना और दूसरों को स्वतंत्र बनाना, इसकी रिजल्ट बाप दादा देख रहे। तो ये भी एक पेपर है, तो ऐसे 10 पेपर है। क्योंकि जो लंबा समय तक कारावास में रहता है उसको वहां से निकलने की इच्छा नहीं होती है, उसको वही अच्छे लगने लगता है फिर कारावास। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी 1789 से 1799 तक 10 साल ये क्रांति चली थी, तो वहां पर जो कैदी लोग थे उनको पेरिस का जो बहुत बड़ा जो किला है बैस्टाइल करके, वहां पर उनको डाल दिया था, और जो भी कैदियों को वहां बंद कर दिया था उनके हाथों और पैरों को बेड़ियां लगा दी गई थी, और जन्म भर के लिए वहां उनको रहना है तो जो भी चाबियां थी वो फेंक दी गई थी। तो कितने सालों तक कैदी वहां पर रहे, कई सालों तक, कोई 30 साल, कोई 40 साल उसी में सोते थे, बेड़ियां पहनकर, हाथों में बेड़ियां और पैर कर, और एकदम डार्क डंजन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, डार्क सेल, अंधकारमय कुटिया में उनको रख दिया गया था। कितने साल तक वो कैदी वहां थे, और जब क्रांति हुई, विप्लव हुआ, और क्रांतिकारियों ने सारे जेल को तोड़ दिया, और क्रांतिकारियों ने कहा कि आज से सब आजाद हो, निकलो बाहर, वो निकलने की उनको इच्छा ही नहीं थी, वो कह रहे थे हमको यही अच्छा लगता है अब, हाथ से और बेड़िया लगी रहती थी। वो कहते थे उनको खाना तो वहां पर मिलता था, परंतु फ्रांस की जो क्रांति थी उसमें ऐसा हुआ, कुछ विचित्र सी घटना हो गई, क्रांतिकारी आए और सभी जेलों को तोड़ दिया और सभी कैदियों को बाहर निकाला, तो इनको नींद ही नहीं आ रही, वो कह रहे कि हमको तो बेड़िया चाहिए, जब तक बेड़िया नहीं तब तक नींद नहीं आएगी, ये प्रकाश हमसे सहन नहीं हो रहा है सूर्य का, हमको फिर ले चलो उसी अंधकार में, क्योंकि अंधकार की 30 साल से कोई उसमें, कोई 40 साल से, और बेड़ियों जो थी उसकी चाबियां थी नहीं, वो तो तोड़नी पड़ी, क्रांतिकारियों ने आकर बड़ा ही तो जिनको अंधेरे में रहने की आदत पड़ जाती है वो वहां से छूटना नहीं चाहते, और हम चाहते हैं उनको स्वतंत्र करना, तो बड़ा कार्य है ये, आदत पड़ जाती है अंधकार की, बेड़ियों की, बंधनों की, छूटना नहीं चाहती आत्मा, परंतु उन्हें टेस्ट कराना है, साथ चखाना है स्वतंत्रता क्या होती है। इसके लिए बाबा ने कहा ना, जज और वकील जैसे उधर छुड़ाते हो ना, फंसाते भी हो, अगर विकारों के वशीभूत कोई कार्य करते हैं तो छुड़ाते फंसाते हो, झूठ कभी, झूठ कभी सच, तुमको स्वयं को छुड़ाना है और दूसरों को छुड़ाना है, लौकिक सेवा भी करनी है तो अलौकिक सेवा भी करनी है, वो दूसरा पॉइंट था। तो आत्माओं को बंधनों से स्वतंत्र कितना किया है, स्वयं को बंधनों से कितना स्वतंत्र कर दिया, ये भी पेपर आज बाप दादा चेक कर रहे हैं, और इसकी भी मार्क्स है। तो ऐसे सारे पेपर बाबा ने चेक किए, शुरुआत की स्नेह से, सहयोग, और तीसरा शक्ति स्वरूप। तो हमें अपने आप को चेक करना है, मास्टर सर्वशक्तिमान कहां तक बना हूं, या केवल शक्तिमान बना हूं, शक्तियां थोड़ी कम तो नहीं है, समय पर सारी शक्तियां कार्य में लगा सकता हूं, दूसरों को शक्तिशाली कितना बनाया है, दूसरों में पावर और बल कितनी भर दी है हमने, हमारा जीवन ही देखकर दूसरों को कितनी प्रेरणा आ रही है उस पर यह आधारित है, कौन कितना शक्तिशाली है, हमारे बोल, हमारे संकल्प, हम जो भी संकल्प कर रहे हैं वो वातावरण में फैल रहे हैं, अगर शक्तिशाली संकल्प है तो हम स्वतः ही वातावरण को शक्तिशाली बना रहे हैं, ऐसे हम कितने बने, कितने हम परमात्मा प्रेम में स्वयं डूबे हुए हैं, कितनी वो जो धारा है, जो डोर है, जो रस्सी है, जो धागा है, वो कितना अटूट है कि बार बार टूटता है, बार बार गांठ बांधो, बार बार टूटा फिर गांठ बांधो, फिर कोई व्यक्ति आया, फिर कोई परिस्थिति आई, ऐसा तो नहीं है। सहयोग, कितना सहयोग दे रहे हैं, कितने हम सहयोगी है, कोई स्वार्थ भावना तो नहीं है। बाबा ने कहा कि ये लास्ट मार्जिन है, एक मार्जिन और लास्ट चांस, ये लास्ट चांस है, समय बहुत कम है, समय बहुत निकल चुका है, ये लास्ट चांस है। इस लास्ट चांस में कुछ दो तीन बातें कही है कि जो करनी है तो ही हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। अभी भी कोई बहाने बनाते रहे तो ये तो बाप के रूप में चेक कर रहे, फिर सब अंत में होगा, धर्मराज साथ में होगा, फिर लास्ट चांस भी नहीं मिलेगा, फिर पश्चाताप, खून के आंसू ही बहाने पड़ेंगे। पुरुषार्थ का समय अब है, अभी इसी वक्त, लास्ट चांस। पाश्चात्य जगत में एक लेखक हुआ है, लियो टॉल्स्टॉय, उसने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि एक रात वो सोया और उसे स्वप्न दिखा कि उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद देखा कि वो दूसरों से बात करना चाह रहा है, उसको जला रहे हैं, पर वो वहां है उसकी जैसी छाया, परंतु कोई उसको सुन नहीं रहे। उसे इतना पश्चाताप हो रहा है कि मैं तो फिर किसी ने बताया कि तो उसकी तो मृत्यु हो गई, उसने सुना तो उसने इतना पश्चाताप हो रहा है, उसको इतना पश्चाताप हो रहा है, वो कह रहा है कि हे प्रभु मुझे एक अवसर अभी भी दे दो, मुझे कितनों को मैंने दुख दिया था, मुझे उनसे जाकर माफी मांगनी है, मैंने अपनी पत्नी को कभी इतना प्रेम नहीं दे पाया, मुझे उससे फिर से थोड़ा और प्यार देना, मैंने कभी उसकी बातों को सुना नहीं, मैंने अपने बच्चों को प्यार नहीं दिया, मुझे एक अवसर फिर दे दो। रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है भगवान के सामने, मुझे एक अंतिम अवसर फिर दे दो, कितनों को मुझे सुख देना था, कितनों के प्रति मेरे मन में कितनी घृणा भाव था, मुझे वो सारा अपने आप को शुद्ध करना है। ओ लॉर्ड गिव मी वन मोर चांस। और इतना होता है तो उसकी आंख खुलती है और देखता है कि मिल गया चांस, आज ही करूंगा वो सब, जिसको जिसको दुख दिया है जा जाकर सबसे पहले तो माफी मांगूंगा उनसे, जिनके जिनके प्रति घृणा भाव थी वो सारे भाव को नष्ट कर नए भाव प्रेम के, शांति के, जो जो मन में दुर्भाव था उसको नष्ट करूंगा। तो वो समय आज है, बाबा ने भी क्या कहा, अंतिम अवसर, लास्ट चांस। और ब्रह्मा बाबा बोले आगे, अंतिम अवसर का विशेष हक, जैसे ये हक है, लास्ट चांस का विशेष हक बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि अभी अभी आए हैं, एक है शुरुआत वाले और एक है अभी अभी आए, एक है अब साकार वाले और अभी अभी है अव्यक्त वाले। तो अव्यक्त वालों को तो क्या कर दिया बाबा ने, 25% छूट, एक्स्ट्रा मार्क्स। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वैसे ही मिल जाएंगे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और वो पुरुषार्थ भी बाबा ने आज बताया है। इसमें ये एक ही चांस है, और ये टीचर जो है इसके साथ में कोई छल कपट नहीं चलेगा, चतुर सुजान है वो, बुद्धिमानों की बुद्धि है, तेजस्वियों का तेज है, तपस्वियों का तप है, इसके सामने कोई भी छल कपट नहीं चलेगा, वो धर्मराज सब होगा। अभी तो बाप के रूप में चेक कर रहे, परंतु तब धर्मराज होगा। इसके लिए जैसे वो दिखाया ना, चार विद्यार्थी होते हैं मेडिकल कॉलेज में, हमको ये जोक सुनाया जाता था, मेडिकल कॉलेज में चार विद्यार्थी होते, दूसरे दिन परीक्षा होती है पर रात भर मस्ती करते रहते, सुबह होश आता है कि अरे आज परीक्षा है, तो कहते क्या करे, कुछ तो योजना बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि पूरा वो कार मैकेनिक जो होता है, कार मैकेनिक, उसके कपड़े पहन लेते हैं और पूरा ग्रीस लगा ले देते हैं, और प्रिंसिपल के सामने जाते हैं और कहते हैं कि हम कहीं शादी में गए थे, गाड़ी खराब हो गई और चक्का पंचर हो गया, और गाड़ी को ढकेलते ढकेलते हम यहां तक लेके आए, देखो हमारा हालत क्या हो गई, अभी हम परीक्षा कैसे दे, आज तो परीक्षा तो देने की बात हम खड़े भी नहीं रह पा रहे, तो आप कुछ करो, रहम करो, दया करो, कृपा करो। तो प्रधान अध्यापक कहता है ठीक है, 3 दिन के बाद तुम्हारी परीक्षा होगी। तो वो तो बहुत खुश होते, इतने जल्दी मान गया उन्होंने तो योजना बनाई होती है, इतना जल्दी वो मान गया। तो 3 दिन के बाद, 3 दिन तक बहुत पढ़ाई करते हैं, 3 दिन के बाद जब जाते हैं तो वो कहता है कि इनका एक विशेष पेपर होगा, इन चारों विद्यार्थियों को चार अलग अलग स्थानों पर रखा जाएगा, चार अलग अलग कमरों में, और केवल दो ही प्रश्न होते हैं, पहला प्रश्न आपका नाम क्या है, 2 मार्क्स, और दूसरा प्रश्न होता है, उसके मार्क्स होते 98, वो प्रश्न होता है कि कार का कौन सा पहिया पंक्चर हुआ था। पहला ऑप्शन, उसमें चार ऑप्शन होता है, बाएं आगे का दाया, दूसरा आगे का बाया, तीसरा पीछे का दाया, ऐसे ये चार प्रश्न होते हैं, चार उत्तर, इनमें से सिलेक्ट करो। इस प्रश्न के मार्क्स होते हैं 98 और अलग अलग कमरे में चारों बैठे। तो उन्होंने कहा ना कि हम शादी में गए थे और पंचर हो गया और ढकेल के लाए, तो वो टीचर बड़ा चतुर था, और बाप जब धर्मराज के रूप में आएगा केवल चतुर नहीं होगा, वो और भी बहुत कुछ होगा, उसके सामने एक भी दाग छिप नहीं सकेगा, उसके सामने कोई दाल नहीं गलेगी तुम्हारी। तो बाबा ने लास्ट मार्जिन, लास्ट चांस, एक मार्जिन बताई है, तीन बातें, कौन सी चीजें करनी है जो अभी करना है, अगर वो करोगे तो उड़ता पंछी हो जाओगे, अगर वो करोगे तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा, अगर वो करोगे तो डबल लाइट बनेंगे, अगर वो करोगे तो वो होगी हाई जंप, क्योंकि समय बहुत कम है, पहले ही लेट कर दिया है, ये बहाना नहीं चलेगा कि हम लेट आए, समय अब है पुरुषार्थ का। कौन सी तीन बातें कही? सबसे पहला तो भक्ति की बातें बाबा ने की है, कि यज्ञ रचो, एक व्रत लो और दान पुण्य करो, तीन बातें कही है। एक ऐसा इकोनॉमी, वो इंजीनियरिंग में बाद में आएंगे उस पर। सबसे पहला है यज्ञ रचने को कहा। कौन सा यज्ञ? जलाने का यज्ञ। किसको जलाना है? इसमें बीती बातों को, बीते संस्कारों को। और कैसे जलाना है? कैसे जलाना है? क्या करना है? क्या प्रकट करना है जिससे ये जल जाएंगे? वैराग, वैराग चाहिए, वैराग। कैसा वैराग चाहिए? दिल का। और एक विशेषण जोड़ा, अविनाशी, इनडिस्ट्रक्टिबल डिस्टेस्ट फ्रॉम द हार्ट, दिल का अविनाशी वैराग। दिल का अविनाशी वैराग से क्या कर दो? जला दो, बीती को जला दो, जैसे वो अभी है ही नहीं, अब तक जो हुआ हुआ, अब उसका कोई चिंतन नहीं, पुरुषार्थ का समय अब है, आज नया दिन, आज नया सवेरा, सब कुछ नया आज है, बहुत बड़ी गलती की कर ली, भूल जाओ अभी उसको, लास्ट चांस दिया है ना, तो अभी भी समय है, अब तक पुरुषार्थ नहीं किया, अब तक टाइम वेस्ट किया, अब तक दूसरों को देखते रहे, अपने को देखने का समय अब है, कब तक दूसरों को देखोगे, कब तक? अभी स्वयं को देखना है, मैं कहां हूं, मैं कहां खड़ा हूं, कितना पुरुषार्थ मेरा अब हो रहा है, पहला। दूसरा, अमृत वेले से तो रात तक, श्रीमद पर की मर्यादाएं और ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का पालन कितना किया है, यह है व्रत। उसके लिए सबसे पहले तो ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का पता रहना चाहिए। अगर ज्ञान ही नहीं तो बस वो जो विद्यार्थी था और जो शिक्षक था और वो अध्यापक था और वो जो समिति का अध्यक्ष था, बस वैसी स्थिति होगी। ये नहीं कह सकते कि ये मुझे पता ही नहीं था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो वन, ये बोल नहीं सकते कि हमको तो पता ही नहीं था, सब कुछ बता दिया है बाबा ने। ये नहीं कह सकते कि ये जो प्रश्न आया ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये सिलेबस के बाहर का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, बाबा ने सब कुछ बता दिया है, सारी मुरलियां सामने है, उसके महावाक्य सामने है, एक एक चीज को तुमको एक शब्द की बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बिना बताए मैं सब कुछ बताता हूं, परसों मुरली में था ना, कुछ पूछने की जरूरत नहीं तुमको, सब कुछ मैं वैसे ही बताता हूं, कुछ मांगनी करने की भी जरूरत नहीं है तुमको, मैं तुम्हें बिना मांगे ही सब कुछ दे देता हूं, वैसे ही तुमको सब कुछ देता हूं, कुछ मांगना ही नहीं है तुमको, एक अक्षर भी पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बता देता हूं। तो उसने सब कुछ बता दिया, सारे राज बता दिए। तो दूसरा था व्रत, कौन सा व्रत? नियम और मर्यादा है, ईश्वरीय नियम और ईश्वरीय मर्यादा है। कौन सी मर्यादा है, कौन से वो नियम है, जो हमको पता नहीं, ऐसे भी कुछ नियम है? अगर नहीं है तो पता करो, खोज करनी है, जानना है, समझना है, क्योंकि ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान ही चाबी है। तीसरा, दान, पुण्य करना है। किनको दान करना है? प्रजा को। और ब्राह्मणों को सहयोग देना है, ब्राह्मणों को। यह दान पुण्य का कार्य अविनाशी चलता रहे। तीन चार दिन के वरदान भी इसी तरह के थे, दान दो, वरदान दो, विधाता बनो, तो स्व का ग्रहण भी छूट जाएगा, इससे कमजोरी के संस्कार भी समाप्त हो जाएंगे, अगर वो संस्कार इमर्ज हो जाए तो विधाता के। तो लास्ट चांस के लिए सबसे पहली बात है वैराग। वैराग से पुराना जो भी है उसको नष्ट कर देना है, उसको समाप्त कर देना है। और जब मधुवन में आए हैं तो ये तो सुनहरा सुंदर अवसर है कि जो कुछ हुआ जीवन में अब तक, जो दुखद है, जो पीड़ादायी है, उसको समाप्त कर देना और नए की नए का आगाज करना। तो बाबा ने पहले तो पेपर चेक किए, बाद में फिर रिजल्ट देखी, बाद में फिर चांस दिया, और ये तीन बातें चांस की बताई। और ब्रह्मा बाबा ने बीच में फिर क्या कहा? साकार और अव्यक्त पालना। उसके लिए क्या कहा? जो अव्यक्त में आए हैं उनको 25% एक्स्ट्रा। क्या ऐसा मिल रहा है जो अव्यक्त में आए हैं उनको, अगर कंपेयर करें? कभी हमने इस पर चर्चा की थी शायद। तो क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है जो अव्यक्त में आए हैं उनको? ज्ञान रिफाइंड मिल रहा है एक तो, और बोलो, अव्यक्त वातावरण, संघ है, इतना बड़ा ब्राह्मणों का संघ, इतने सारे श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं का संघ, और लिटरेचर कितना सारा है, हर बात की किताबें हैं, कैसेट्स है, कमेंट्रीज है, सब कुछ अवेलेबल है, गीत है, संगीत है, पीस ऑफ माइंड, कितना सब कुछ है। ज्ञान की सामग्री देखो कितनी है, जो कि अव्यक्त पहले नहीं थी साकार में, अभी जो अवेलेबल है। और क्या मिल रहा है? सुविधा है। पहले ऐसी सुविधा थी क्या मधुबन में? क्लासेस भी नहीं। अभी कितनी सारी क्लासेस है पुरुषार्थ की, कितनी सारी, कितनी आत्माओं के अनुभव आप सुन सकते हो, किताबें भरी पड़ी है। ज्ञानामृत में कितनी आत्माओं के अनुभव आते हैं? हाँ, माइक भी नहीं था अभी माइक है, हॉस्पिटल भी नहीं था तो साकार में जो अव्यक्त में आए उनको कितनी सारी चीजें हैं, परंतु ऐसा नशा भी रहना चाहिए। क्या क्या लेना है, वो लक्ष्य और लक्षण वो भूलना नहीं। हम यहाँ क्यों आए हैं, अपने आप को बार बार यही याद दिलाओ। अभी बाबा आने वाले, कितने दिन बाकी है सुशील भाई? 15 या 16 दिन। क्या देंगे बाबा को? बाबा आएगा फिर होमवर्क पूछेगा छड़ी लेकर, छड़ी लेकर कि बाप के रूप से। रिजल्ट तो देखेंगे बाबा, कौन उसको आकर्षित करेंगे जिन्होंने सारे होमवर्क किए थे पिछली मुरलियों के। कितनी मुरली थी? 10 कि 8? 8 मुरलियों का। जो भी बाबा ने होमवर्क दिए थे वो सारी मुरलियों के जिन्होंने होमवर्क किए, उनके तरफ बाबा की दृष्टि सबसे पहले जाएंगी। ऐसे बच्चे बाप को बहुत प्रिय है, जिनका एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ, वो उसको बहुत प्यारे लगेंगे। जिनकी जिन्होंने हर दिन मुरली बड़े प्यार से सुनी और ध्यान से सुनी और स्मृति में भी रखी और उसकी चर्चा भी की और उसका चिंतन भी किया, उसका मनन भी किया, और उसके एक एक महावाक्यों को जैसे कि वो रत्न है, हीरे है, ऐसे माना। ऐसे ही है ना उसके महावाक्य। मुरली क्या है? मुरली तो एक ऐसा फल है जिसका ना छिलका है और ना गुठली, कुछ भी त्यज्य नहीं है, किसको छोड़े, ऐसा आम है वो, छिलका भी नहीं है और गुठली भी नहीं है। छोड़ने का कुछ है ही नहीं, क्या छोड़े, सभी पी लेना है। तो ऐसी चीज, ऐसी अद्भुत चीज है उसकी मुरली, उसमें शक्ति है, ताकत है, चौप चीनी। तो उसको, ऐसी जो आत्माएं हैं, कितना स्वयं को परमात्मा प्रेम प्यार में जिन्होंने मगन कर लिया, ऐसी आत्माओं पर उसकी दृष्टि सबसे पहले जाएगी। कौन वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ सफल कर लिया, स्वयं की छोटी छोटी बातों के पीछे, धन के पीछे, तन के पीछे, साधन के पीछे, संबंध निभाने के पीछे, संकल्प समय न गवाकर कहां अर्पण कर दिया, सेवा में। यह समर्पण समारोह मनाओ, ऐसी जो आत्माएं हैं। स्व के भान को मिटा दिया, आज का वरदान, दूसरों को आगे बढ़ाया, ऐसी जो आत्माएं, उन पर उसका ध्यान जाएगा। स्व की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, हद की प्रवृत्ति, इन सबसे बाप के स्नेह स्वरूप को सामने रखा और नष्ट मोहा हुए, ऐसी जो आत्माएं हैं उन पर उसकी दृष्टि पहले जाएगी। जिस जिन्होंने अमृत वेले से रात तक हर नियम और मर्यादाओं का पालन किया है, जो उसने दिनचर्या बना के रखी है वो दिनचर्या वैसी ही फॉलो की है, कितनों को शक्तिशाली बनाया, कितनों को सहयोगी बनाया, कितनों को बाप के प्यार से भर दिया, छाप छोड़ दी, ऐसी आत्माओं को देखेगा और उनसे बहुत प्यार करेगा। तो बाप को क्या गिफ्ट देना है, ऐसे हमारा स्वरूप हो। बाबा को गिफ्ट देंगे कि नहीं, कितना दूर से आ रहा है, मिलने आ रहा है ना हमसे, तो उसको कुछ गिफ्ट भी तो देनी पड़ेगी। अव्यक्त फरिश्ता स्थिति की गिफ्ट उसे देनी है, श्रेष्ठ स्थिति की गिफ्ट उसे देनी है। विदेशियों से क्या कहा बाबा ने, कैसे सेवा करो, अभी शांति की, साइलेंस की शक्ति से, क्योंकि आत्माएं तड़प रही है, भटक रही है, किसकी प्यासी है, एक सेकंड के शांति की। तो उन्हें क्या दे दो, स्नेह दे दो और शांति दे दो। स्नेह की भी कमी है तो शांति की भी कमी है, चाहे भाषण करो चाहे ड्रामा करो, परंतु दोनों स्वरूप का बैलेंस हो, बड़ा प्रोग्राम करो या छोटा प्रोग्राम करो, पहले तो स्नेह में डुबो दो, स्नेह का संबंध जोड़ो और उससे फिर शांति का अनुभव कराओ। यह सेवा करनी है। ये सेवाओं के जितने डायरेक्शंस बाबा ने दिए, ये तो 35 साल पहले की मुरली है, बहुत सारी चीजें साकार हो चुकी है, जो भी बाबा ने तब कहा था हो चुका है, बहुत सारा। इस तरह से प्रोग्राम करो, इस तरह से ये करो वो करो, ये सारी बातें जो बाबा ने कही है, बहुत सारी चीजें तो हो गई है। तो ऐसा ये कार्य करो। फिर इंजीनियर से क्या कहा बाबा ने, इंजीनियर अर्थात प्लानिंग बुद्धि, रूहानी इंजीनियर, रूहानी प्लानिंग बुद्धि। प्लानिंग बुद्धि वाला वैसे रह नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, प्लान बनाएगा ही, जिसका जो कार्य है वो उसको न चाहते हुए भी वो कार्य उसको खींचेगा। इसके लिए प्लानिंग बनानी है। ये केवल इंजीनियर्स की बात नहीं है, हमारी भी बात है। केवल सेवाओं की प्लान नहीं, परंतु पुरुषार्थ की भी प्लानिंग हो। जब तक हमारे मन में प्लानिंग नहीं है, हम क्या करेंगे पुरुषार्थ। अभी बाबा आने को कितना 16 दिन है, 17, तो उतनी हमारे मन में प्लानिंग हो कि क्या करें इन 17 दिनों में, ऐसा क्या करें कि भगवान खुश हो जाए देखकर, ऐसा क्या करें कि भगवान महिमा करने लगे, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि ऊपर से फूल बरसने लगे। तो और क्या कहा इंजीनियर्स को, प्लानिंग कैसा हो, इकोनॉमी वाला हो, और कैसा हो, पावरफुल हो, सफलता ज्यादा हो उसमें। बहुत सारे उदाहरण दिए, देखो भगवान की भाषा कैसी है। कभी सैक्रीन का उदाहरण दिया, जैसे सैक्रीन की एक बूंद बहुत बड़ा काम कर दी थी। एक सैक्रिन शक्कर से कितना गुना स्वीट होती है? 300 से 400 गुना स्वीट होती है सैक्रिन, 300 से 400 गुना। तो जैसे सैक्रिन की एक बूंद, वैसे फिर इंडस्ट्री का भी उदाहरण दिया। इंडस्ट्री में जैसे इंडस्ट्री खोलते हैं तो कितने लोगों को आजीविका रोजी मिल जाती है, रोजी रोटी, वैसे भी तुम इतनी आत्माओं की, इतने आत्माओं को संदेश दो। तीसरा उदाहरण, और भी उदाहरण दिए? नहीं, मून चांद के लिए कुछ कहा ना, चांद में क्या करते हैं, साइंस की शक्ति क्या करती है वहां पर, प्लॉट, प्लॉट की फ्लैट, तो वहां पर प्लॉट खरीदते हैं। तो हमको कहां प्लॉट खरीदना है, खरीदा है प्लॉट, खरीद लिया, ये माता ने खरीद लिया है। बुकिंग तो कर लो, बाबा ने कहा। अच्छा, सिटी बजी नहीं है तो बाद में खरीदेंगे। अरे हाँ, सिटी से याद आया, कर्नाटक को हम भूल गए, बाबा ने बीच में कर्नाटक को याद किया। सीट की सिटी, स्वीट की सिटी, बाबा से, बाबा के जब से बन गए तब से क्या कर लिया, प्लॉट खरीद लिया। कितने? बहुत सारे। इसके अच्छा बच्चों के लिए भी खरीद लिए, अच्छा सब बच्चों के लिए, अच्छा तो प्लॉट भी खरीद लिए है, बुकिंग भी कर ली और प्लॉट भी खरीद लिए, ठीक है। हाँ, कर्नाटक को और दो बातें कही थी बाबा ने, क्या कहा था कर्नाटक को, कि सीट लेने में बहुत होशियार है, इसके लिए अभी फाइनल की नजदीक सीट लो, फाइनल में सीट नजदीक लो। और दूसरा, राजी रहते हैं, ज्ञान के राजों को जानकर चलने वाले कभी नाराज नहीं होते, ये दो बातें कही थी कर्नाटक को। तो कर्नाटक भी बैठा है बाबा के सामने, तो इंजीनियर ग्रुप भी बैठा है, तो जूरिस्ट भी बैठे है, कैसी ये सभा है मेडिटेशन हॉल में, ऐसी सभा बाबा के सामने थी। इन आत्माओं के बीच ये मुरलियां चल रही है। फिर इंजीनियर्स 80 में समाप्ति कब हो जाएगी ध्रुव भाई? अगर 60 इंजीनियर्स 60 अलग अलग प्लान बना दे तो 80 में समाप्ति हो जाएगी, पर हुई नहीं है अभी। और एक उदाहरण दिया इंजीनियर्स के लिए आशीष भाई, कौन सा उदाहरण है? प्रयोगशाला का। जैसे साइंस में प्रयोगशाला प्रयोग करते हैं, फिर छोटा इसमें लैब में प्रयोग करते, कुछ भी नई चीज को ढूंढते तो अनाउंस करते हैं वहां पर, वैसे भी यहां पर सेवाओं का अपनी एरिया में प्रयोग करो। और फिर कहा सफलता का सबूत दो, फिर कहा अपने अंदर जो विशेषता है वो कार्य में लगाओ। बहुत सारी बातें कही है बाबा ने इंजीनियर्स से। तो इंजीनियर्स को क्या कहा सार में? रूहानी इंजीनियर्स बनना है, प्लानिंग बुद्धि बनाना है, प्लान बनाना है। सेवा के प्लान की बात है, हमको प्लान बनाना है पुरुषार्थ का भी, अच्छा प्लानिंग बनाना है। ऐसा प्लानिंग बनाए कि जिसमें अमृत वेला शक्तिशाली हो, ऐसा प्लानिंग बनाओ कि मुरली के समय पूर्ण नशे से मुरली सुने और याद भी रखे, रिवाइज भी करे, एक दूसरों से मुरली की थोड़ी चर्चा भी करे, एक दूसरों को सुनानी भी है मुरली कि आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने किस किस को याद किया, आज का वरदान क्या था, आज का स्लोगन क्या, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ चलना ही नहीं चाहिए। ज्ञान की बुलबुल बजती रहे कि टिकलू टिकलू करती रहे, ज्ञान की सरिता बहती रहे। फिर जज और वकीलों से बाबा क्या कहते हैं, उसका थोड़ा तो हमने बोल दिया, उदाहरण दिया बाबा ने एक यहां पर, जैसे वो वैसे तुम। जैसे वो कौन? पांडव। पांडव अज्ञातवास में थे ना, कितना साल? महाभारत में कहानी है 14 वर्ष अज्ञातवास में नहीं थे, 13 वर्ष उसमें वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। मत्स्य जनपद में कौन से है वो विराट सम्राट, उसके यहाँ पांचों पांडव और द्रौपदी। द्रौपदी सैरंद्री के रूप में, वो जो दासी थी, तो बाबा ने कहा ये जो तुम पैर दबाना या पानी भरना ये कि तुम्हारा काम ये इसके लिए नहीं हो तुम, तो सैरंद्री उसकी जो उसकी दासी बनी। जो युधिष्ठिर दिखाया है वो कुंक बना, वो राजा का, विराट का। और वो दिखाया है कौन? भीम वो रसोईया बना, सब अलग अलग जगह, क्योंकि अज्ञातवास अर्थात कोई भी अगर देख ले, जान ले, समझ ले तो अज्ञातवास भंग, फिर और आगे 13 वर्ष संन्यास वनवास। राजा विराट के यहाँ पर और दिखाया है वो कौन, अर्जुन क्या बना, ब्रह्मला और नर्तकी उत्तरा जो उसको सिखाने वाला। तो ये जब कर रहे थे बहुत कुछ अपमान भी सहन करना पड़ा उनको, वहां पर बहुत बड़े बड़े पेपर भी आए, वहां एक कीचक था उसका भी वध हुआ था भीम के हाथों, तो इस तरह के भी पेपर वहां आए थे, अपमानित भी होना पड़ा था बार बार, नकुल और सहदेव एक तो गौशाला में, तो इस तरह वे अज्ञातवास में रहे। तो बाबा ने कहा तुम भी अज्ञातवास में हो परंतु लक्ष्य क्या है, सेवा। चलो बाबा की याद में फिर से खो जाते हैं। और क्या कहा जज और वकीलों को बाबा ने, कि वो सेवा क्या करते हो, निमित्त मात्र करते हो, तुम्हारी मुख्य सेवा क्या है, ईश्वरीय सेवा, डबल सेवा करते हो, एक तो लौकिक और दूसरी ईश्वरीय। लौकिक सेवा से क्या करते हो, सहयोग देते हो, और ईश्वरीय सेवा से सुख शांति का मार्ग बताते हो, रास्ता बताते हो। तो ऐसा इस तरह से बाबा ने सभी ग्रुप से बात की। अभी हमको इस मुरली से पुरुषार्थ के लिए क्या लेना है, गुप्त सेवा। ऐसा क्या पुरुषार्थ का प्लानिंग बनाए, बाबा ने कहा प्लान बनाओ, तो हमारे पास 16-17 दिन है, उसके लिए हम ऐसा कुछ प्लान बनाए कि जिससे हम स्वयं संतुष्ट हो अपने पुरुषार्थ से और बाबा भी संतुष्ट हो। क्या करें बोलो, क्या किया जाए। सार यही है, माताओं को बहुत नशा रहता है। हमारे पास कुछ दिनों पहले एक माता आई थी, उसको इतना नशा, इतना नशा क्या बताए, उसको बुखार था 104। हमने कहा जब उसको आप भर्ती हो जाओ, तो कहता नहीं मैं तो बाबा की सेवा में आई हूँ, एक दिन में मैं नहीं रुक सकती, इतना नशा बहुत चढ़ेगा मेरे ऊपर अगर मैं यहाँ आई सेवा के लिए और कुछ और करूँ तो, इतना नशा। फिर भी उसको कहा कि नहीं आप हो जाओ, तो जबरदस्ती भर्ती किया, और वो तो जाने को ही कह रही थी। जब रात को 8 बजे जाकर देखा तो मुरली पड़ रही थी, और तब भी बुखार था, 100 तो था ही तब, पर नशा इतना उसको, बहुत नशा, और कुछ नहीं चाहिए। दूसरे दिन फिर से जाना है तुरंत, जो उसको कहा कि रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, तो बोला नहीं बस जाना है। तो 2 दिन बाद गई, बाद में तो पता नहीं कहाँ चली गई, बाद में दिखी नहीं। तो ऐसा बहुत नशा होता है। तो पुरुषार्थ का हम स्वयं अपना प्लानिंग बनाएं कि ऐसा क्या करें कि अमृत वेला शक्तिशाली भी हो, उसका जो समय है उसकी अवधि है वो भी थोड़ी ज्यादा हो, अशरीरीपन का उसमें ज्यादा से ज्यादा अनुभव हो, सारे दिन भर अच्छे अच्छे समान का अभ्यास करें। एक पुरुषार्थ ये भी कर सकते हैं, जहां जहां जो भी स्लोगन लिखा है मधुबन में, पांडव भवन में, जब भी किसी स्लोगन पर नजर पड़े तो 2 मिनट रुककर उसको पढ़कर उसके अर्थ के ऊपर चिंतन करना। ऐसा कुछ करे कि सारे दिन भर ज्ञान में स्थिति रहे, और एक दूसरे से बातें करे तो ज्ञान की ही बातें करे, स्वयं से बात करना, बाप से बात करना और ज्ञान का चिंतन करना, ये 3 चीजें हमेशा होती रहे। स्वयं से बात करना, एक बाप से बात करना, सर्व संबंधों का अनुभव करना, सेवा करते हुए वो सब करना, सोचना कि सेवा कर रहे तो बाबा जैसे साथ है, उसके साथ का अनुभव केवल उथल गहराई से वो अनुभव करना, प्रगाढ़ अनुभव हो, प्रगाढ़ अनुभव कि जैसे वो है और जो भी कुछ देखते हो सुनते हो वो सब कुछ ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे उस दिन कहा था ना कल्प वृक्ष वो जैसे झाड़ है वो क्या है वैरायटी धर्मों का झाड़ अंधों के आगे आईना। तो यहां से जो भी वस्तु दिखते जो भी चित्र देखो जो भी फोटो देखो जो भी डिपार्टमेंट देखो उन सबको ऐसा देखना कि ये जैसे अलौकिक अपने नैनों को अलौकिक बना देना। चारों युग किससे देखा हमने दो नैनों से देखा ना अब देखना है तीसरे नैनों से। चारों युग देह को देखा अब आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। तो मन में नए नए उमंग आते रहे ऐसा अभ्यास करना है। दिल शिकस्त नहीं होना है कोई भी बात से ये एक पक्का करके रखना है। अपने हृदय में वो वैराग हो पुरानी बातों का अब चिंतन समाप्त करना है। रोज रोज की मुरली से नए नए पुरुषार्थ के पॉइंट लेना और तुरंत उसको करना प्रैक्टिकल उसी दिन उसी समय उसको प्रैक्टिकल में लाना। तो ये सारा हमको पुरुषार्थ करना है और हर दिन कुछ ना कुछ नया 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 करते रहना। एक ही योग नहीं करते रहना है जो सुना था बहुत पहले। हर दिन योग में भी नए नए प्रयोग ज्ञान में भी नए नए प्रयोग तो सेवाओं में भी अलग रीति से सेवा करना कि ये सेवा मैं क्या करूं कि जिससे बहुत अच्छी रीति से हो सके। इस तरह से सारे प्रयोग करना है। हाँ तो माता को तो उमंग बहुत है ही तो अपने आप को स्वयं उमंग में लाना है ये अभ्यास करना है। 16 दिन 16 कला 16 दिन में संपूर्ण बन के बाबा के सामने जाके खड़े हो जाओ तो बाबा ताली बजाएगा। तो ऐसे राजयुक्त बच्चों को ऐसे योगयुक्त बच्चों को ऐसे युक्तियुक्त कर्म करने वाले बच्चों को ऐसे रूहानी रूहों को ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान आत्माओं को ऐसे महापुण्य आत्माओं को ऐसे महादानी आत्माओं को ऐसे बाप के रंग में रंगने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड नाइट याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते ओम शांति।